مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کیا آیا ہم اس مولا کے فرمان پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہماری زندگی میں کوئی سخت کام آتا ہے یا ذرا سی اونچ نیچ آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا منہ موڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو آئیں آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی اونچ نیچ آئیں، جو بھی سخت یا مشکل کام آئیں، اسے سوچ کے سمجھ کے حل کریں۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ ایک گرما گرم سا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بہت بہت صبح خیر پیارے ناظرین۔ موسم کا حال تھوڑا پتہ چلوں گا کہ آپ تہران میں ہیں تو اپنے ساتھ چھاتا یا گرم کپڑے پہن کے نکلیں، کیونکہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ آج برف باری ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں خورم، چلتے ہیں خورم کے پاس۔ جی خورم،
سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور سلام 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 عرض کرتا ہوں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور مزیدار قسم کا پروگرام، ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اپنی خوبصورت صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کر چکے ہوں گے۔ رباب، اور کیا ہے ہمارے پاس پروگرام میں؟
پروگرام میں تو آج خیر بہت کچھ ہے، میں کچھ بہت انٹرسٹنگ خبریں بھی لے کے آئی ہوں۔ اور آج کا پروگرام، ایسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ہفتے کا موضوع جو چل رہا ہے جھوٹ کے بارے میں ہے،
ٹھیک ہے؟
تو جھوٹ تو خیر بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو آج میں نے جو مولا کا جو فرمان سے میں نے جو بات شروع کی تھی، کہ ایک تو یہ ہے کہ مشکل ترین کام جو ہوتے ہیں ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، لیکن ہم یہ ہے کہ ان کاموں کو جھوٹ سے اسے چھٹکارا پا لیتے ہیں،
بالکل
بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا جھوٹ یا بہانے بنا کے کس طرح نکل جاتے ہیں۔ تو ہماری آج یہ کوشش ہونی چاہیے، آج کے دن تقریباً ہم یہ عہد کر لیں کہ چلیں کوشش ہی صحیح، لیکن ہم وہ کوشش ضرور کریں گے کہ وہ کام جو ہم جھوٹ بول کے بہانے بنا کے ان سے بھاگ جاتے ہیں، یہ کام نہ کریں اور ان کاموں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
ایک جو بڑی دلچسپ چیز ہمیں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ میرے ذہن میں کافی دیر سے آئی ہوئی اور یہ مجھے بھول جائے گی، اس لیے میں جو ہے پہلے یہ بات بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ آپ نے یہ سنا کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی انسان اگر دوسرے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس میں کچھ حقیقت ہے یا یہ صرف فلموں میں دکھایا جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہوتا ہے۔
اچھا،
یہ ایک میں اپنے آپ پہ پرسنل بول شیئر کروں، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دیکھیں ایگزامز وغیرہ میں کبھی تھوڑا ڈاماڈول ہو جاتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ شاید ہم اس وقت استاد سے شاید جھوٹ بول لیتے تھے، لیکن جب گھر آ کے ماں باپ کی آنکھوں میں دیکھا جاتا تھا تو وہ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ چیز آتی ہی نہیں تھی۔ یعنی وہ آنکھ میں آنکھ ملا کے بولتے بیٹا آیا یہ کام ہوا یا آپ نے ایسا کیا، تو وہ سر جھکا کے بولنا پڑتا جی ہم نے کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی۔
یہ تو بہرحال یہ ہے کہ لڑکیوں میں کم ہمت ہوتی ہے، لیکن لڑکے جو ہے ماشاء اللہ وہ گھروں میں بھی بولتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ امتحان ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 80 کو 90 کر دیے، 90 کو 100 کر دیا، 10 کے فرق کے ساتھ۔ البتہ اللہ معاف کرے، کوشش کرنی چاہیے کہ سچ سچ بولیں، کیونکہ بہرحال سچ میں جو ہے اس کا اپنا جو ہے سکون انسان کو ملتا
ہے۔ اور نا خود ہم بات وہی آ جاتی ہے، دیکھیں میں ناظرین کو بولنا چاہوں گی، شاید اس وقت ہم نے جھوٹ بول کے ماں باپ کا دل بہلا لیا،
بالکل
وہ 10 کو 100 بنا دیے یا اس کا زیادہ نمبر بنا دیے، لیکن آگے چل کے دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ رہتا ہی ہے کہ ہم نے خود سے اپنے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے اگلی کلاسوں میں اگر 5ویں میں آپ 6ٹی میں جا رہے ہیں تو اسی سبجیکٹ میں پھر سے فیل ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہاں محنت نہیں کی،
وہاں پر پھر کیا کریں گے؟
بالکل وہاں
بالکل بڑی اچھی بات کی۔ اور ایک اور جو بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے،
بالکل،
اور اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے،
بالکل۔
یہ دو چیزیں جو ہیں
جس طرح سیدہ ارم نقوی صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جھوٹ تمام جو برائیاں ہیں اس کی جو جڑ ہے۔ اور دیکھیے وہی بات ہوتی ہے نا، انسان اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور سے بہت سی حرکات شروع کر دیتا ہے، شاید وہ اپنی اس نے شاید کسی کو جھوٹ بولا کہ میرے پاس اتنی مال دولت ہے، میں اتنا پیسے والا ہوں، اس جھوٹ کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نے چوری شروع کر دی یا اس نے اور کوئی غلط رستے اپنا لیے۔ تو یہ ایک بات ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
بالکل، ظاہری بات ہے جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ہم لوگ چوری کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کل کو اگر ہمارے سے کوئی پوچھے گا تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہم چوری نہیں کریں گے،
بالکل۔
اور خیانت کا بھی بالکل ایسا ہی ہے،
صحیح۔
تو یہ چیز جب ذہن میں انسان کی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار اگر میرے سے جب پوچھا جائے گا تو میں تو جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، میں تو سچ بولنے والا انسان ہوں۔ تو پھر جو ہے بات، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات رباب لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جھوٹ کے اندر اتنی طاقت ہے، طاقت یعنی منفی طاقت اس طرح کہوں تو بہتر رہے گا، کہ ایک جو ہے محاورے کی زبان میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، جب سچ جو ہے وہ بیچارہ جوتے پہن رہا ہوتا ہے اور اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی وہ تیزی سے آگ لگا دیتا ہے جھوٹ کہ آپ جو ہے سچ جو ہے آپ کا بیچارہ وہ ابھی تیار ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے، आपका झूठ ने जो है पूरी
दुनिया, आपकी इस बात से ये बात बिल्कुल सही है कि झूठ जो है वो फौरन अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि हम आदि हो चुके हैं झूठ सुनने के। यानी ये एक माहौल सा बन गया है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि वो सब एक दूसरे से झूठ जो बोल रहे हैं वो बैठ सा गया है, और सच बहुत देर से अपनी जगह बना पाता है।
असल में रुबाब, ये जो आपने बात की है कि जगह अपनी बना लेता है, बड़ी अच्छी बात की है। इसको मैं अगर एक तरीके दूसरे तरीके से बयान करूँ, वो ये है कि झूठ क्योंकि आसाइश दे देता है इंसान को। मिसाल के तौर पर जैसे आपने खुद ही कहा,
शॉर्टकट हो गया।
हाँ, शॉर्टकट हो गया। जैसे आपने कहा कि एक काम एक बंदे को दिया जाता है, और वो काम इसलिए दिया जाता है, वो इम्तिहान है कि वो जिंदगी में और ज्यादा कामयाब हो सके, और ज्यादा उड़ सके। लेकिन आप हम लोग जो हैं वो उसको वो कैसे शॉर्टकट मारा, थोड़ा सा झूठ बोला। या मिसाल के तौर पर जैसे उस दिन बात हो रही थी कि कर्ज लेने की, अब जाहिर बात है आप अपने खुद मेहनत से पैसे कमा के कोई काम करेंगे तो उसमें थोड़ी सी सख्ती भी है।
बिल्कुल।
लेकिन बिल्कुल झूठ की तरह अगर आप जो है वो कर्ज मांगते रहेंगे लोगों से, वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, और अपना जारी हुआ, तो उसमें सुकून यानी इस तरह का सुकून है कि जी बच्चा आपको काम नहीं करना पड़ रहा।
आपको देखिए, और फिर एक बात है खुर्रम, उस पैसे के लिए जो आपने खुद ने कमाए हो अपनी मेहनत से, लगन से, आपका दिल जरूर जलता है
उसमें, तो
मतलब आप उसमें फजूल खर्ची नहीं करेंगे उस पैसे में, ठीक है, उस पैसे को किसी अच्छी जगह लगाएंगे। लेकिन एक पैसा जो किसी और तरीके से आपके पास आया है वो वैसे ही निकल जाएगा, या तो आप फजूल खर्ची में निकाल देंगे, को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे खर्च हो गया।
बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा रुबाब, क्या ख्याल है, ईरान का एक सूबा है मशरकी अज़रबैजान, वहां की सैर कीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे जो चलते हैं वहां पर, देखते हो नाजरीन को अज़रबैजान की सैर कराते हैं, देखते हो नाजरीन को किस तरह लगता है। लेते एक वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाजन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं आपको मशरक़ी अज़रबैजान की जो सैर है वो पसंद आएगी। कुछ तारीखी और खूबसूरत इमारात की जो मनाजिर आपने देखे आपको पसंद आए होंगे। यहाँ चलते हैं खुर्रम के पास और देखते हैं आज के मेहमान कौन है। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मशरक़ी अज़रबैजान के में हम लोग सैर को भी बड़े खूबसूरत मनाजिर से, मैंने खुद जो है मैं पहली बार जो है देख रहा था, और बड़े घूमने फिरने वाली जगह लग रही है। बहरहाल हमारे साथ हमारे आज के मेहमान डॉक्टर ज़हीर अब्बास मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और अपने मौजू को इंशाल्लाह जो है शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब सुने आप जो है हम लोग ने आप मशरक़ी अज़रबैजान की सैर करी, सुने आप जो है इस्फहान की सैर करके आए हैं अभी ताज़ा।
बिल्कुल, अभी रिसेंटली।
इस्फहान डॉक्टर साहब कैसा है?
इस्फहान बहुत खूबसूरत शहर है, आप देखें कि वहाँ पर उसकी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उसकी सड़कें और उसके अतराफ में जितना जो है वो सब एक, आप कहें कि बिल्कुल एक रेगुलर जो है वो सड़कें जो हैं उनकी अपने अंदर एक नज़्म कानून है, एक अपनी उसकी खूबसूरती है, उसकी जो आप कह लें कि जो बिल्डिंग्स हैं ख़ास तौर पे कुछ ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत ही आप कह लें कि मशहूर हैं, और वो भी देखने के काबिल हैं। देखने वाला शहर।
बहरहाल बहुत शुक्रिया
जी। प्रदर्शनों के नाजरीन अगर हो तो इस्फहान में कुछ म्यूजियम्स हैं जहाँ मैं खुद जा चुकी हूँ,
ठीक है,
और बहुत जबरदस्त म्यूजियम्स हैं।
अच्छा, इसमें भी ये बताते चलूँ कि इस्फहान को जो है आधी दुनिया का नाम देते हैं ईरानी, वो कहते हैं कि जिसने इस्फहान देख लिया यानी उसने आधी दुनिया देख ली।
बहरहाल लाहौर के बारे में कहा जाता है।
हाँ, ये बहरहाल ये बातें जो है बहरहाल की जाती, लेकिन इस्फहान वाकई जो है शहर देखने वाला है। डॉक्टर साहब आपने जो बताया कि जिल्द का जल जाना, इसके बारे में जो है आप बात करेंगे, तो जी
सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। देखें कि जिल्द का जलना जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसके बारे में डिस्कशन करना, इसके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन रखना बहुत अहम है। लेकिन जब जलने की बात आती है तो इसमें सबसे पहले कुछ और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जो है आग लगी है, हम आग से जो है वो स्टार्ट करते हैं
जी,
किसी कई बिल्डिंग जो है उसमें आग लग गई है, आप किसी कमरे के अंदर है वहाँ पे आग लग गई है, तो वहाँ पे जिल्द की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है,
ठीक है।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना सबसे अहम है।
सही।
उनमें जो है एक तो यह है कि आपका जो तनफ्फुस है क्या वो काम कर रहा है,
सांस का
जो लेना है, क्योंकि उस वक़्त धुआं और स्मोक जो है और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और उस एनवायरमेंट में जो बिल्कुल जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको ज़ाहिर है आप उनके साथ सांस लेंगे,
ठीक है,
ये हो सकता है आपके जो तनफ्फुस है उसके साथ थोड़ा मुश्किल पेश आए, तो आप सबसे पहले जो है उसका ख्याल करें, यानी कहीं भी अगर कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो अहम ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारे लंग्स हैं,
ठीक है,
जिसके इसके अलावा हमारा जो दिल है इसके इसके बारे में जो है सबसे पहले जानना चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो बेहोश हुआ पड़ा है उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप जो है इन दो चीज़ों के ऊपर जो है ख़ास तौर पे तवज्जो दें। उसके बाद जाके जब ये चीज़ें स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप जिल्द के बारे में जो है वो बात करें।
लेकिन सब यहाँ पर आपने बोला कि सांस लेना और दिल की धड़कन दोनों को चेक करना है, फेफड़े हो गए, दिल हो गया, इन दोनों को चेक करना है। यहीं पर डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप ये भी बताते चलें कि कैसे चेक किया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है मसलन कुछ लोग जो है कान रख के चेक करते हैं दिल पे, कुछ लोग कहते हैं वो उंगली रखें, कुछ लोग नब्ज़ को पकड़ लेते हैं, कौन सा आपके ख्याल में मामूलन आप लोग जो है हॉस्पिटल वगैरह में किस मेथड को इस्तेमाल करते हैं?
देखें हॉस्पिटल में और बाहर के माहौल में जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आम लोगों के लिए इस हद तक जाना ज़रूरी है कि आप जो है अपना कान जो है अपने जो शख्स बेहोश हुआ पड़ा है, चाहे वो किसी सड़क पे है, चाहे वो घर में है, चाहे किसी रूम में है, कहीं भी है, आप सबसे पहले उसका उसके जो आप कह लें कि मुंह है उसके ऊपर अपना कान रखें।
अच्छा,
वहाँ पे उसकी जो सांस की जो आवाज़ है उसको आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दिल के ऊपर जो है वो कान रख के उसको सुन सकते हैं।
ठीक है,
और अगर जो है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप इस तरह हाथ रख के गर्दन के ऊपर,
ठीक है,
यहाँ पे चूंकि जो नब्ज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है,
अच्छा,
उसको फील करना जो है वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू आप अगर यहाँ पे अगर नब्ज जुड़ लें, तो यहाँ पे हाथ रख के ये लिटरल साइड पे आप जो है इसको चेक कर सकते हैं।
सही है।
अगर जो है ये दोनों चीजें हों तो इसका मतलब है कि कोई ज्यादा परेशानी की बात
नहीं है।
लेकिन अगर जो है ये इन में से कोई एक या दो नहीं है तो उस सूरत में CPR जो है वो एज सून एज पॉसिबल शुरू करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है,
लेकिन सबसे पहले जो काम किया जा सकता है वो ये है कि आप उसको एक शख्स जो बेहोश हुआ पड़ा है उसको आप आवाज़ दें, उसको बुलाएं, उसको थोड़ा बहुत उसको टटोलें, यानी उसका हाथ पकड़ के उसको हरकत दें।
सही,
अगर जो है वो जवाब दे तो इसका मतलब है कि वो होश में है, अगर जवाब नहीं दे रहा तो उसके बाद ये स्टेप्स जो आपको बताएं इनको अंजाम देना जरूरी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि कोई अगर इस तरह गिरा पड़ा, बेहोश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं उसका नाम लेके उसको पुकारा जाए, ये वही चीज है जो आप कह रहे हैं कि हिलाए जुलाए?
बिल्कुल, सबसे पहले उसको बुलाया जाए।
ठीक,
आप जाहिर है आप हो सकता है उसका नाम नहीं जानते हो, लेकिन किसी भी नाम से या आप वैसे ही कह सकते हैं कि मिस्टर या मिसेज या इस तरह कुछ करके, और उसके बाद जो है उसको टटोला जाए। टटोलने से पता ये चलेगा कि क्या ये शख्स जो है वो पूरी तरह बेहोश है या थोड़ा बहुत उसके अंदर होश है अभी।
ठीक है, तो ये इसका फर्क जो है बहुत जरूरी है मिलकर पकड़ना। ठीक है डॉक्टर साहब, तो चलते हैं कि जब जल्द जल गई हमारी, सही।
और इसके अलावा देखें, सिर्फ एक ये एनवायरमेंट है जिसमें आग लग जाती है,
ठीक है,
इसमें जो है हम आगे चल के जल्द के बारे में बात करेंगे। बस कुछ यूँ होता है कि कोई गर्म चीज जो है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपकी चम्मच जो है वो कोई गर्म थी वो आपके ऊपर गिर गई है,
बिल्कुल,
या कोई और गर्म चीज़ जो है, बाज़ का यूँ होता है कि मुख्तलिफ घर के अंदर जो चीज़ें हैं या बच्चे ख़ास तौर पे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, या चूल्हे के ऊपर अभी चूल्हा जो है अभी आप देखें कि अभी आपने खामोश किया है, अभी ऑफ़ किया है और अभी जो है वो किसी ने उसके ऊपर हाथ लगा दिया, तो इन सूरतों में देखना ये चाहिए कि जिल्द की जो जलन है वो किस हद तक है, वो किस उसकी शिद्दत किस हद तक है।
ठीक है,
अगर जो है वो बहुत ही माइल्ड हो, यानी इसका अंदाज़ा जो है हम उसको देखने से लगा सकते हैं, और माइल्ड हो तो उस सूरत में घर के अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट करना जो है वो काफ़ी होगी।
ये हल्का सा है आपको देखने में लग रहा है, ना जिल्द ख़राब हुई है ज़्यादा, ना जो है इस तरह की चीज़ें, तो आप
उसको हम जो है वो पिक्चर से भी
दिखाएंगे,
दिखा सकते हैं।
ठीक है,
और लेकिन उसकी जो आप देखें, अगर आप उसका मुआयना करना चाहें तो इस आपको एक जो है वो कट नज़र आएगा, कट इस हद तक कि स्किन जो है आपकी बर्न हो चुकी है,
जल गई,
थोड़ी बहुत जो है वहाँ पर रेड हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग आ चुकी होगी, लेकिन इसके अलावा आप उस कुछ और फील नहीं करेंगे, लेकिन यह कि थोड़ी सी आपको पेन भी होगी।
सही है,
तो इसकी तीन सिम्टम हो गई, एक जो है वो रेडनेस होगी उसके ऊपर, दूसरा यह थोड़ी बहुत स्वेलिंग होगी,
हाँ, आ गया
बिल्कुल, और तीसरा जो है थोड़ी सी पेन आप फील करेंगे। अगर इसी हद तक हो तो इसका यह मतलब है कि आपको फर्स्ट डिग्री बर्न है और आपका ये माइनर जो है वो बर्न है,
ठीक है,
और इसको आप जो है वो इजीली घर में कंट्रोल कर सकते हैं।
ये
बिल्कुल जिस तरह आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक देख रहे हैं कि आप एक कट है और सिर्फ एक आप कह लें कि कोई गर्म चीज़ जो है वो हाथ के ऊपर लगी है,
ठीक है,
और उसके ऊपर एक वो जो है बर्न आप बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये जो है आप कह लें कि इसको घर में इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं तो उसमें और भी वाजे है
जी। अगली तस्वीर भी अगर दिखा दी जाए तो उसमें भी जो है जी,
इस तस्वीर में आप देखें कि ये भी जो है फर्स्ट डिग्री बर्न है।
ठीक है,
आप देखें कि पूरा जो बाजू है वो तकरीबन रेड है, थोड़ा बहुत उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है।
ठीक है,
और अभी चूंकि ये दूसरा या तीसरा दिन है इसके गुजरे हुए, इसीलिए थोड़ी सी आपको जो है वो स्किन ऊपर से उतरती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है, ये अच्छा, ये जो थोड़ी सी जेल जो डॉक्टर साहब उतरी हुई है इसको भी हम फर्स्ट डिग्री मिलेंगे।
बिल्कुल सही, लेकिन अगर जो है अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलें,
ठीक है,
और इसके ऊपर जो है आप कह लें कि थोड़े बहुत छाले नज़र आए आपको, उस सूरत में ये सेकंड डिग्री है।
डॉक्टर साहब सेकंड डिग्री पे जो है मुफसल जो है तफसील से हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है एक छोटा सा हमने वक्फा लेना है और जो है रुबाब देखते हैं हमें कहाँ पर लेके जा रही हैं, क्या दिखाने जा रही हैं, हमें ये बताएंगे कैसे हमारे नाजरन रब्ता कर सकते हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया खुर्रम, जिस तरह आपने बताया कि आपको कहीं लेके नहीं जा रही, वैसे नाजरन को ये बताने जा रही हूँ कि रात नाजरन इस प्रोग्राम के दौरान किस तरह हमसे रब्ते में रह सकते हैं। लेते एक वक्फा जिसमें आपको बताएंगे आप किस तरह हमसे रब्ते में रह सकते हैं। जी नाजरन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आपने वो तमाम रास्ते वो तमाम तरीके देख लिए जिससे आप हमसे रबते में रह सकते हैं प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद, तो ज़रूर आपके कमेंट्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। डॉक्टर ज़हीर अब्बास हमारे साथ हैं और मौजू है स्किन का या जल्द का जल जाना। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया, और जो है हम लोग मुंतजर थे कि आप जो है हमें कहीं सैर सपाटे पर लेके जाएंगी, कोई खूबसूरत सी मौसीकी कोई तराना सुनाएंगी। बहरहाल मसला नहीं है,
नाजरन के लिए ज़रूरी था कि नाजरन को याद दहानी हो जाए कि हमसे रबते में।
अभी जो है आप नाजरन की फिक्र में हैं, हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, बार चलेंगे हम लोग भी चलेंगे, हमारी बारी भी आएगी इंशाल्लाह, कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में आपने बता दिया। सेकंड डिग्री बर्न, ये बर्नों का जानना जो है नाजरीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है, फर्स्ट डिग्री का जलना है, तो उसमें आप घर में उसको उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप सेकंड डिग्री के बारे में डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, तो डॉक्टर साहब से पूछ लें। जी डॉक्टर साहब
जी, सेकंड डिग्री जो है उसकी आप कह लें कि अलामतें इस तरह हैं कि एक तो यह है कि उसके ऊपर छाला नज़र आएगा,
ठीक है,
दूसरा यह है कि बहुत ही शदीद आपको पेन होगी,
दर्द जो है वो शरीर
बहुत ज़्यादा होगा।
तस्वीर भी अगर दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी,
आप देख सकते हैं। और इसके अलावा स्वेलिंग जो है वो बहुत सीवियर होगी, बहुत ही शदीद जो है वहाँ पे वर्म आ चुका होगा। उसके अलावा आपकी जो रेडनेस है, और यानी वो जो फर्स्ट डिग्री की अलामतें हैं वो भी होंगी, और उसके अलावा बहुत शदीद पेन, और दूसरा यह है कि आप कह लें कि इस स्वेलिंग और ये भी जो है बहुत ज़्यादा शदीद होंगी, और छाले जो हैं वो भी मुतादा नज़र आएंगे।
डॉक्टर साहब ऐसा कह सकते हैं कि मसलन जितना फर्स्ट डिग्री में होता है उसका दुगना तकरीबन कह दिया जाए दर्द?
देखें आप इसको जो है वो इस तरह की
नहीं कर सकते,
नहीं मेजरमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन अंदाज़े से यह है कि आमतौर पर उसकी दर्द जो है वो इस हद तक शदीद होता है कि आप उसको आप इजीली तहमुल नहीं कर सकते,
ठीक,
और आपको जो है वो फील होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, यानी इस हद तक जो है वो दर्द शदीद होती है,
ठीक है,
और उसकी वजह ये होती है कि छाले उस वक्त बनते हैं जब आपकी जो जो बर्न हुआ है वो आप कह लें सेकंड जो लेयर है हमारी स्किन की जिसको हम डर्म कहते हैं,
ठीक है,
उसके अंदर तक पहुंच चुकी होती
है। पहली एपिडर्म थी, दूसरी जो थी वो डर्म थी,
डर्म थी, बिल्कुल,
तो डर्म तक पहुंच गए जो भी,
और जिस हद तक ये आगे आप कह लें कि उसकी जो गहराई है वो ज्यादा होती चली जाएगी, उस याद तक जो है उसका हम डिग्री जो है वो इजाफा होती चली जाती है। जिस तरह के हम जो थर्ड डिग्री है उसमें हमारे पास छाले बिल्कुल नहीं होंगे, यानी उसके ऊपर छाला वगैरह आपको नजर नहीं आएगा।
अच्छा।
लेकिन यह है कि उसमें जो आप चीज देखेंगे अगर तस्वीर में
तस्वीर, भी आप अगली तस्वीर अगर दिखा दीजिए जी,
तो उसमें यह है कि आपको रेडनेस भी बहुत कम होगी, वहाँ पे जो है वो रेडनेस जो है जिस तरह हमने कहा बहुत कम होगी, लेकिन वाइटनेस जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सा सफेद नजर आएगा।
अच्छा।
इस तस्वीर में आप एक छाला देख रहे हैं, ये देखें सेकंड डिग्री बर्न है,
ये भी सेकंड डिग्री,
बिल्कुल ये सेकंड डिग्री है, क्योंकि छाला जो है वो, लेकिन ये बहुत ही एक शॉर्ट कांटेक्ट था,
ठीक है,
जिसमें एक बहुत ही गर्म चीज जो है उसका उंगली के साथ लगी है, लेकिन छाला बन जाना इसकी इस चीज की अलामत है कि ये सेकंड डिग्री बर्न है,
ठीक है,
लेकिन हमेशा जो है वो सेकंड डिग्री बर्न को ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं,
ठीक है,
बस का यूँ होता है कि बहुत ही स्मॉल जो है वो बर्न है, बहुत ही कम है, और ये उसकी जो है आप कह लें कि अंदाज़ा जो है उसका चौड़ाई या इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आम तौर पे इसको जिस तरह इस बर्न में आप देख रहे हैं, ऑल दो ये सेकंड डिग्री बर्न है, लेकिन इसको घर में ही ट्रीटमेंट किया
जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग जो है इसको,
और अगर नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं तो उसमें आप जो है पाँव के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थर्ड डिग्री बर्न है।
अच्छा।
और ये बहुत ही आप कह लें कि खतरनाक हो सकती है।
अच्छा।
क्योंकि ये आप कह लें कि जो हमारी जो फैट वाली लेयर है, जो तीसरी लेयर है,
जो लेयर है
उस हद तक पहुंच जाती है,
ठीक है,
और ये इसकी गहराई चूंकि ज़्यादा है, इस वजह से ये इस आप कह लें कि बोन तक पहुंच सकती है, हड्डी वगैरह तक पहुंच सकती है, और बाज़ूकात अगर वहां तक पहुंच जाए तो इन्फेक्शन वगैरह का चांस बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि जॉइंट के ऊपर है, यानी आप कह लें कि जोड़ जो है उसके ऊपर होने की वजह से जोड़ खुद जो है वो रिस्क को जो है वो और कई चंद बराबर कर देते हैं।
अच्छा,
तो यही वजह है कि इसको और भी सीरियस लेना चाहिए।
सही है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो है वो व्हाइट और येलो हो चुकी है।
ठीक है।
और व्हाइट येलो हो जाना इस चीज की अलामत है कि ये थर्ड डिग्री बर्न है।
ठीक है, व्हाइट
और येलो, इसको बहुत ही सीरियस लेना जरूरी है और इस सूरत में डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बहुत जरूरी है।
सही है।
लेकिन अगर हम इन जिस तरह हमने कहा कि सेकेंड और थर्ड डिग्री को हमेशा ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन फर्स्ट डिग्री जो है जिसको हम माइनर बर्न कहते हैं उसको घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता
है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग छोटा सा जो है जाएंगे रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब अब जो है आप कहीं पर हमें लेके जाइएगा।
आपकी बारी आ गई है, इंतजार का वक्त खत्म हुआ, अब कुछ वक्त हुआ है खूबसूरत सी मौसीकी, खूबसूरत सी वीडियो क्लिप देखने का, लेते एक वक्त और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाजरीन जी, नाजर आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये खूबसूरत सा तराना, खूबसूरत से मनाजर के साथ बहुत पसंद आएगा। थोड़ी बाहर की ताज़ी हवा, खाली थोड़े परिंदे वगैरह देख लिए, थोड़ा फ्रेश होकर हम वापस स्टूडियो में आ गए।
जी बिल्कुल, हम लोग जो है थोड़ा सा माहौल से, हमने कहा थोड़ा सा जो
जल जाने की बातों से बाहर निकल जाते हैं,
जलने शलने की जो बातें होती हैं। अलबत्त दो किस्म का जलना
है, बिल्कुल ये स्किन का जलना है, वैसा जलना नहीं है,
दूसरा जलना भी मौजूद होता है, बहरहाल वो भी है। तो हमने कहा थोड़ा सा जो है इस माहौल से आपको बाहर निकाला जाए, और जो है बीमारियों के माहौल से भी हम बाहर निकालेंगे आपको, आ जाएंगे इलाज की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं इलाज की बात करते हैं कि जब जल गया तो उसके ऊपर मरहम कैसे रखना है।
जी बिल्कुल, जिस तरह की हमने बात की जो फर्स्ट डिग्री बर्न है जिसमें सिर्फ पेन होती है, लेकिन थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी रेडनेस और स्वेलिंग, इस सूरत में आपकी जो है ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न में भी इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपकी जो स्किन है वो आप कह लें कि किसी ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर जली है, फॉर एग्जांपल चेहरा है, चेहरे के ऊपर जल जाना चाहे वो फर्स्ट डिग्री बर्न ही क्यों ना हो, उस सूरत में भी बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे स्कार का जो है बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका हो जाना ज़्यादा बिल्कुल अहम है। या फॉर एग्जांपल आपके लब जो हैं वो जल गए हैं, या आपका जो नाक है इसके ऊपर जो है वो जलन आ चुकी है, या आँख के अंदर जो है वो कोई चीज़ गर्म चली जाती है, या हाथों के ऊपर जो है ख़ास तौर पर जो हमारे जोड़ हैं
जी
उनके ऊपर जो है अगर फर्स्ट डिग्री बर्न भी हो और वसी हो, उस सूरत में जो है हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाए। लेकिन आम हालात में जो छोटे मोटे घर में जो बर्न हो जाते हैं उनके सूरत में घर के अंदर ही इलाज किया जा सकता है। और उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप जैसे ही जले उसको फौरन जो है वो एक टूटी जो है वो आप खोलें और अपनी जो जगह है, जिस तरह की आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जहाँ पे जलन हुई है उसको, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो प्रेशर है पानी का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है,
क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो इस ये पॉसिबिलिटी है कि वो ज़ख्म जो है और भी गहरा हो जाए। इसलिए एक आम सा जो प्रेशर है उसको रखते हुए, और पानी जो है वो तकरीबन आप कह लें कि ठंडा होना चाहिए लेकिन बहुत ठंडा भी ना हो, उसका इस्तेमाल करें, तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए आप उसके नीचे रखें। इससे ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत जो है वो कंफर्टेबल आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपका जो दर्द है वो बहुत बेहतर हो चुका है। उसके बाद जो है, लेकिन अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं हो आपके पास, यानी कोई नज़दीक टूटी वगैरह नहीं हो, तो उस सूरत में आप जो है देखें कि कोई आपके पास लिबास है या कोई थोड़ा छोटा सा कपड़ा है या रुमाल है उसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा उसको भिगो लें,
ठीक है,
उसको जो है अपने ज़ख्म के ऊपर रख लें,
ठीक है,
इसको भी 5 या 10 मिनट के लिए रखें, तो ये भी आपको तस्कीन देगा और आपका दर्द जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं जो कि आप कह लें कि ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स के हवाले से है, उसमें यह है कि आप अगर आपका दर्द जो है या थोड़ी आपको हो सकता है वहाँ पर एक इस तरह की फीलिंग हो जिस तरह की सुइयाँ चुभ रही हैं,
ठीक है,
तो ये भी बाज़ का फीलिंग हो सकती है, उस सूरत में आप हाइड्रोकोर्टिजोन एक ऑइंटमेंट मिलता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन तमाम मेडिकल स्टोर्स पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा सिल्वर का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिल्वर सल्फर डियाजीन का एक क्रीम्स होती हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाज़ का यूँ होता है कि अगर आपके घर में जो है हनी है, और आपको इसकी श्योरिटी है कि ये हनी जो है वो बिल्कुल प्योर है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ का तो उसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो उसके अंदर डाली जाती हैं, उस सूरत में हो सकता है आपका ज़ख्म जो है उसको और भी डैमेज आ जाए उसमें। अगर जो है वो प्योर हो तो उस सूरत में उसकी एक लेयर जो है आप उस ज़ख्म के ऊपर लगा सकते हैं।
अच्छा,
हनी के बारे में देखा गया है कि ये एंटी बैक्टीरियल है।
अच्छा।
और इसके अलावा जो ज़ख्म है उसको रिपेयर होने में हेल्प करती है, यानी उसको आप कह लें कि फास्ट करती है।
अच्छा।
तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो घरों में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, यानी उसको आप कह लें कि डिसइंफेक्ट करने के लिए,
जरासीम से
पाक करने के लिए, बाज़ का जो है वो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है,
जलन ज़्यादा नहीं
बिल्कुल ऐसा नहीं है, जलन जो है वो जब आपने पानी उसके ऊपर गिराया और वो काफ़ी हद तक जो है वो उसके अंदर आपको तस्कीन मिल जाती है, उसके बाद जो है आप इसको जरासीम से पाक करने के लिए इस नमक या पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर, नमक पानी का इस्तेमाल या शहद का इस्तेमाल जो आपने कहा,
बिल्कुल
ये फर्स्ट डिग्री में भी किया जा सकता है?
नहीं, सेकंड डिग्री में जो है ये इन चीज़ों का, ये सिर्फ जो है वो फर्स्ट डिग्री
में, बिल्कुल। हाँ सही, कि जिल जो है वो थोड़ी सी जली है, कट शट कोई
है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है जख्म नहीं हुआ, यानी उसके अंदर जो है रप्चर नहीं हुआ, आपकी स्किन जो है वो
कटी नहीं है,
फटी नहीं है, उसके अंदर छाला वगैरह नहीं पड़ा है। लेकिन अगर जो है वो छाला वगैरह पड़ जाता है, और छाले की सूरत में भी आप जो है वो पानी के नीचे उसको डाल सकते हैं, और जो छाला है उसको कभी आप जो है उसको छेड़े नहीं, उसको जो है वो उसी तरह रहने दें, खुद ब खुद जो है वो खाली हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो सुइयों से और सुई वगैरह लेके उसको खाली करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के काम से जो है वो इन्फेक्शन का चांस जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो सुई आप इस्तेमाल करेंगे हो सकता है उसके अंदर जरासीम हो, और यही जरासीम या आपकी स्किन के ऊपर जरासीम हो वो स्किन के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरह के कामों से परहेज़ करनी चाहिए। और वो जो छाला है वो खुद ब खुद आम तौर पे चंद दिनों के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जिस तरह के हमने बताया कि सेकंड डिग्री बर्न जो है उसकी अगर वसी हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जिस तरह के हमारा चेहरा है, जिस तरह के हमारे जोड़ हैं, इस सूरतों में आपको डॉक्टर पास कंसल्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो चाहे वो सेकेंड डिग्री हो। और आम तौर पर आप कह लें कि 10% से अगर जलन ज़्यादा हो, चाहे कोई वो बर्न हो, तो उस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और 10% का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आप अपना जो हथेली है, आपकी जो एक हथेली है वो आप कह लें कि 0.5% को तश्कील देती है।
अच्छा,
यानी अगर आप दो हथेलियाँ रखें
तो लेकिन
उंगलियों के बगैर सिर्फ हथेली, तो ये 1% होगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जलन जो है वो किस हद तक है।
अच्छा।
अगर जलन जो है वो 10% से ज़्यादा है तो इस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है।
सही है, यानी एरिए को नापना है वहाँ पर हथेलियाँ रख के। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जो है इंशाल्लाह जारी रखेंगे। चलते हैं रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब भी जो है कुछ जो है इल्मी और कुछ मज़ेदार किस्म की बातें हमारे लिए लेके आए हैं।
आपका थोड़ा सा वक्त लूंगी और कुछ ऐसी खबरें लेके आई हूँ नाज़रीन आपके लिए कि हम सब जानते हैं हमारी हड्डियाँ यानी इंसानी हड्डियाँ इंसानी जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन और भी इनके क्या काम है मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिलचस्प बातें आपको हड्डियों के बारे में बताती हूँ। जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने हमेशा से यही बात सोची है कि हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। जी नहीं, हमारे जिस्म में 300 हड्डियाँ होती हैं जब हम छोटे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम बढ़ते जाते हैं तो ये हड्डियाँ जो छोटी छोटी होती हैं तश्कील हो जाती हैं एक हड्डी के लिहाज से, यानी एक हड्डी बन जाती हैं और इस तरह कुछ करके ये 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। कहते हैं कि हमारी हथेली में, हाथ की हथेली में तकरीबन 54 जो होती है सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हमारी हाथ की हथेली में होती हैं, 54 हड्डियाँ हमारे हाथ की हथेली में होती हैं, हमारे चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती हैं और हमारे जिस्म के निचले हिस्से पे तकरीबन 27 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद कहा गया है कि फ्यूमर यानी हमारी रान की हड्डी हमारे जिस्म की सबसे जो है वो ताकतवर हड्डी होती है, तकरीबन 10-4 गुना ईंट से ज़्यादा वो ताकतवर होती है, यानी उसमें इतनी यानी मजबूत हड्डी होती है। और ये जो हमारी रान की हड्डी होती है ये इंसान के 1/4 हिस्से यानी कद के 1/4 हिस्से के बराबर होती है। कहते हैं कि इंसान की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो उसके कान में मौजूद होती है, स्टेप्स के नाम से होती है, और वो ये तनहा हड्डी है जब आप पैदा होते हैं वो उस वक्त भी 1 इंच की ही रहती है और जब बड़े होते हैं उस वक्त भी ये 1 इंच की ही रहती है। हमारी हड्डियाँ तकरीबन हमारे जिस्म का जो है वो 14% जो हमारे जिस्म का है वो वज़न बनाती हैं। और ये कहा गया है कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारे जिस्म को एक अरेंजमेंट देती हैं, एक तरह से हमारे जिस्म को हमें खड़ा रहने की ताकत, बिल्कुल सीधा खड़ा रहने की, सीधा बैठने की ताकत देती है। और इसके अलावा हमारे दिल की जो हमारी रीढ़ की जो हमारी पसली की जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे दिल की मुहाफ़िज़ होती हैं, हमारा जो जो हमारे चेहरे की हड्डी होती है, हमारे अंदर जो मसल्स वगैरह होते हैं या हमारा जो सर जो होता है, आप उसकी हड्डी का अगर देख लें, वो हेलमेट की तरह हमारे भेजे को या हमारे मक्स की जो होती है वो मुहाफ़ज़त करती है। जी नाज़रीन, तो हो गई कुछ इंसानी हड्डियों की बातें, लेते हैं खूबसूरत सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ मज़ेदार से खाने पीने की बातें हो जाएं। ये खूबसूरत सी तस्वीर देख के आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं चेरी के बारे में बात करने जा रही हूँ। कहते हैं चेरी जो है वो हार्ट पेशेंट्स को यानी मुरतब यानी ज़रूर खिलाई जाए। इसमें ख़ास किस्म के एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जो वो दिल की रगों को अच्छी तरह खोल देते हैं, और आगे अगर आपको कभी हार्ट अटैक होने का जो ख़तरा है वो उससे आपको काफ़ी हद तक बचाते हैं। फिर कहा गया है कि जो है चेरीज़ के अंदर एक ऐसी खासियत है कि आपके जिस्म के अंदर जो या आपके खून के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की मिकदार है ये इसको कंट्रोल करता है। कहा गया है चेरी के अंदर विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। बीटा कैरोटीन भी इसके अंदर मौजूद है जो आपकी आंखों में जितने भी मसाइल होते हैं, आंखों की जो मरज जो होती हैं, जिस किस्म के भी मसाइल होते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक बचाता है। कहते हैं इसमें मेलाटोनिन टाइप का एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो आपके जो नर्वस सिस्टम जो होता है आपके उसमें जिस्म में उसको काफ़ी हद तक रिलैक्स करता है। एंटी स्ट्रेस होता है, आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और कहते हैं चेरी खाने से सर का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक भी बेहतर हो जाता है। फिर कहा गया है चेरी इन्फ्लेमेटरी है और इसके अंदर ये तस्वीर ज़रा तंग कर रही है। जी हाँ, फिर कहते हैं आपके जिस्म में किसी किस्म की स्वेलिंग आ गई हो, किसी किस्म का दर्द हो, मखसूसन वो हजरात जो वर्जिश करते हैं उनके लिए चेरी वर्जिश के फौरन बाद खाया करें, बहुत बहुत मुफीद है। पट्ठों में किसी किस्म का भी दर्द हो, चेरी उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है आराम देता है। मसल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, चेरी एस्पिरिन और ब्रूफिन की तरह आपके इन दर्दों में काम करता है। डायबिटीज़ पेशेंट, सुनिए इस बात को, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ज़ीरो यानी ज़ीरो जो होता है बिल्कुल सिर्फ इसमें चीनी नहीं होती है और लो फैट होता है और लो कोलेस्ट्रॉल होता है। जिनको अपना वज़न घटाना हो वो भी चेरी का बिल्कुल इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बिल्कुल फैट नहीं होते। और कहते हैं चेरी में ख़ास किस्म के मिनरल्स होते हैं, ये आपको एक ख़ास किस्म की एनर्जी और तवानाई बख्शता है। तो कुछ खाने पीने की बातें, चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब। और जैसे कि आपने भी नोट किया होगा और हम लोगों ने ये चीज़ें देखी, हमारे नाज़रीन ने भी नोट किया होगा कि अल्लाह ताला ने जितने फल सब्ज़ियाँ बनाई हैं उनमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है, और हमें इस चीज़ का जो है अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाया जाए। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ आम पसंद है तो आप आम भी खाते रहें। हर फल जो है उसकी अपनी खासियत होती है, हर फल को जो है थोड़ा थोड़ा जो है
और महीने में। अगर हम इन कुदरती चीज़ों से ही मदद ले लें तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से भी बच सकते हैं।
बिल्कुल, अभी तो डॉक्टर साहब ने भी जो है बता दिया कि शहद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बहरहाल ये चीज़ें। डॉक्टर साहब, एक मिनट है आपके पास, वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो क्या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सिलसिले में नाज़रीन के लिए?
एक दो नुक्ते हैं वो भी बताना चाहूँगा। एक ये है कि अक्सर आपने देखा होगा टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही जल जाता है
जी जी।
उसके ऊपर जो है वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे थोड़ी सी तस्कीन मिलती है।
ठीक है,
और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिंक ऑक्साइड की कुछ
क्रीम्स
हैं, इनके इस्तेमाल से जो है दो जो हैं उसके फ़ायदे हैं। एक ये है कि आपको फौरी तौर पे तस्कीन मिलेगी,
ठीक है।
दूसरा ये है कि आपका जो ज़ख्म है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तरमीम होना शुरू हो जाएगा।
सही।
तो इसके अलावा कुछ ऐसी जो है आप कह लें कम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि जलने के बाद आपको हो सकता है, जब आपका ज़ख्म जो है वो पूरी तरह हील हो चुका होता है,
ठीक है,
उसके बाद आपको नज़र आती हैं, उनके बारे में भी जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे कम किया जा सकता है। अगर जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में
इंशाल्लाह अभी
उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर आम तौर पर आपने देखा होगा कि चेहरे के ऊपर जब इस तरह की कोई मसला पेश आ जाता है तो उसकी जगह जो है वो बाकी रह जाती है।
सही है।
इस जगह को कम करने के लिए इसको क्या इसके इकदाम किए जा सकते हैं, इसके बारे में आगे
इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अगले हफ्ते जो है हम फिर जो है आपसे वक्त लेने की कोशिश करेंगे और जो है इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर इंशाल्लाह जो है बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप जो है आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को और बड़ी अहम नुकात की तरफ मुख्तसर वक्त में जो है हमारे नाज़रीन की आपने जो है बहरहाल जलने के सिलसिले में काफ़ी मदद की, बहुत शुक्रिया।
जी शोरम, बहुत शुक्रिया। मैं भी डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत ही मुफीद और अहम नुकात की तरफ इन्होंने इशारा किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटा सा वक्फा लेने का, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
السلام علیکم، میں آصف خان آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں کچھ خاص لے کے۔ آج ہم دہلی کے مہرولی میں ہیں۔ مہرولی دلی کا سب سے پرانا شہر ہے، جو تقریباً 900 سال یا 1000 سال پہلے راجپوتوں نے بسایا، پھر اس کے بعد مسلمس آئے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں مسلم مہرولی میں آئے۔ ابھی مہرولی میں ہم لوگ جہاز محل کے اندر ہیں۔ ابھی تھوڑا سا ویران ہے یہ جگہ، اجڑا ہوا ہے، بٹ کچھ ٹائم پہلے لودھیز کے ٹائم میں 15ویں صدی میں یہ محل بنا تھا، لودھیوں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اس کے بعد 18ویں اور 19ویں صدی میں مغلوں نے اس پہ جو ہے اپنا اختیار کر لیا، اور اس کو جو ہے اپنا سمر پیلس، مانسون کے بعد، بارش کے موسم کے بعد، شاہجہان آباد سے یہاں آ کے گرمیوں کا سیزن بتایا کرتے تھے۔ کبھی اس میں شاہ عالم، اکبر شاہ، ان کے پوتے، بادشاہ ظفر، جو سب سے لاسٹ مغل کا درجہ جن کو حاصل ہے، وہ یہاں آیا کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں۔ ہوا یہ کرتا تھا کہ شاہجہان آباد تھوڑا سا نیچے تھا، یمنا کے کنارے بسا ہوا ہے، تو برسات کے موسم میں وہاں پہ پانی بھر جایا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ، کیونکہ یہ مہرولی جو جگہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے، ہائٹ پہ ہے، پہاڑ پہ بسی ہوئی ہے، یہاں کا جو موسم تھا وہ کافی اچھا سہاونا ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے تھے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ ان کی بیگمات ساتھ میں ہوا کرتے تھے، ان کے بچے ساتھ میں ہوا کرتے تھے، سارے شہزادی شہزادے سب ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا نام جہاز محل کیوں ہے، کیونکہ اس میں یہ کہیں نہ کہیں کسی جہاز کی طرح تو نہیں لگتا۔ ہوا یہ کہ آج سے 700-800 سال پہلے یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ابھی میں وہ دکھاؤں گا آپ کو، وہاں پانی ہوا کرتا تھا، پانی کے کنارے یہ بنا ہوا تھا، تو دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے پانی میں جو ہے جہاز کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے جہاز محل پڑ گیا ہے۔ ابھی یہاں پہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب لوگ نہیں آتے، لوگ آتے ہیں، لوگوں کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ جن کو جو ہے پرانی جگہ گھومنے کا شوق ہے وہ یہاں آتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسکالرس ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو نہارتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سال میں ایک بار ایک میلہ لگا کرتا ہے جس کا نام ہے سیر گل فروشن۔ یہ مغلس نے جو ہے ایک اسٹارٹ کرایا تھا، ایک اسٹوری ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو بیان کروں۔
جی ناظرین، آپ لوگوں نے آصف کے ساتھ دوبارہ ہندوستان کی سیر کی، امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہماری جو ہے رپورٹ تھی چھوٹی سی مختصر سی پسند آئی ہوگی۔ روباب، ایک بڑی دلچسپ چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور وہی لکھا ہوا ہے کہ جو گناہ جو ہیں وہ ٹولز کی طرح ہوتے ہیں،
بالکل
مختلف قسم، پلاس ہو گیا، پیچکس ہو گیا، اس طرح ہوتے ہیں، لیکن جو جھوٹ بولنا ہے وہ ایسا ہینڈل ہے جو سارے کے سارے ٹولز کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔
اچھا،
یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ پیچکس استعمال کر رہے ہیں تو پیچکس کے ساتھ بھی وہ
جڑ جائے گا، یعنی کوئی خاص قسم کا پیچ نہیں ہے اس کا، ہر چیز
کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب جو مجھے یہاں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ گناہ جو جھوٹ ایسی چیز ہے جو ہر گناہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
آپ یہ بول سکتے ہیں ہر گناہ کی چابی ہے، سٹارٹ ہے، آپ اس طرح بول دیجیے،
سٹارٹ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گناہ، جھوٹ بولنے سے ہی سارے جو ہے گناہ دوسرے شروع ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے وہی دعائیں کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوشش کریں، اور جیسے کہ اس دن بات ہوئی تھی ہماری کہ برائی کو جاننا اور پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔
بالکل، اور خورا میں ایک بات یہاں بولوں، اگر ہم اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ چلیں ٹھیک ہے وہ بندہ نہیں جانتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں، میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے،
بالکل
یہ بالکل یہ ایک بات آ گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اگر دل میں بیٹھ جائے تو میرے خیال سے انسان تھوڑا بچ سکتا ہے۔
بالکل، ایمان کی طاقت جو ہے وہ تو انسان کو ہمیشہ اس طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے۔
کہیں ایمان ہمارا شاید کہیں ڈگمگا سا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ جیسی چیز ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔
بالکل، کہیں نہ کہیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں یہ شیطان جو ہے ہمارے کان میں کچھ بات ڈالتا ہے،
نفس پہ ہمارے پاؤں رکھ دیتا ہے کہ بیٹھ جائے،
ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تو سب سے اہم بات تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر کل کوئی میرے سے جھوٹ بولے گا تو مجھے کتنا برا احساس ہوگا اگر مجھے پتا چل جائے، اور جو ہے مجھے کتنا نقصان ہوگا، یعنی احساسات پہ کتنا مجھے جو ہے
پہنچے گا۔
مثلا میں جب آپ سے جھوٹ بولتا ہوں آپ کو کل کو پتا چل جاتا ہے، یا پھر میں اس چیز کو اپنے بارے میں سوچوں کہ میں تو آج رباب سے جھوٹ بول رہا ہوں، کل اگر رباب نے میرے سے کوئی جھوٹ بولا اور مجھے پتا چل گیا اور مجھے کوئی نقصان ہو گیا، ٹھیس پہنچا، تو کتنا برا احساس ہوگا۔ ان چیزوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔
جی خورم، ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح ناظرین کے لیے یہ دعا کریں گے کہ خوبصورت سی مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور آج اس بات کی عہد کرتے ہیں کہ کوشش کریں कि हम झूठ ना बोलें, कोशिश करें, हर चीज़ कोशिश से ही शुरू होती है जी।
बिल्कुल, गुल जमास हुसैन साहब जो है इंशाल्लाह हमारे साथ में कल जो है ज्वाइन करेंगे और मीडिया के बारे में जो है हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पसंद आएगा प्रोग्राम। कल जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का दिन जो है वो खुशियों से भरा हुआ और पूरी एनर्जी से भरा हुआ गुजरेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और रुबाब को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाज़त दीजिए।